ओम शांति। बाबा के आने के कितने दिन रह गए? 19 दिन रह गए। अब हम जब बाबा से मिलने जाएंगे तो विशेष अभ्यास के बाद जाएंगे। पसंद है? पसंद है माताओं को? ताकि बाबा हमें देखकर ही खुश हो जाए कि मैंने जो काम दिया था, होमवर्क दिया था, वो सब बच्चों ने पूरा कर दिया है। जरा याद कर लें, बाबा ने हमें क्या क्या काम दिया था? आपको याद तो नहीं होगा, बहुत दिन हो गए। मैं याद दिलाता हूं। एक चीज थी संतुष्टता। बाबा अपने बच्चों को पूरा संतुष्ट देखना चाहते हैं। दूसरा पहली मुरली से था बेफिकर बादशाह। भगवान के बच्चे इस संसार में बादशाहों की तरह जिए। तीसरा था सदा खुश रहना, खुशी बांटना, खुश रहना। और चौथी मुख्य बात थी जो सदा ही हमारे लिए है, सभी बातें सदा हैं, व्यर्थ से मुक्त रहना। तो हम सभी ये सब करके भी किया भी है सबने बहुत। ब्राह्मण बनने के बाद सबका जीवन बहुत संतुष्ट हुआ है। हमारे अंदर से आवाज निकली, बाबा आपको पाकर हम तृप्त हुए, धन्य धन्य हो गए। बहुत अच्छा बोला माताओं ने, सब कुछ मिल गया। जैसे हमारी 5000 साल की यात्रा सफल हो गई ना, धन्य धन्य हो गए। सोचो अगर बाबा न मिलता कैसा रहता, न जाने हम सब भी कहां होते। बाबा मिला और एक ठिकाना मिल गया मन को, सत्य और असत्य, सत्य की खोज खत्म कर दी बाबा ने आते ही। देखिए बाबा के ज्ञान की ये बहुत बड़ी ब्यूटी है। इतना कह के तुम आत्माएं हो, तुम्हारा घर परम धाम है। दुनिया की अनेक फिलोसोफीज के जो उलझने थी वो समाप्त कर दी, ज्ञान की उलझने थी। इस छोटी सी बात ने, तुम आत्माएं हो, तुम भ्रकुटी के मध्य में रहते हो, मन बुद्धि सहित हो, तुम्हारा धाम परम धाम है, वहां से तुम आए हो। ये छोटा सा पहला ज्ञान देकर, बहुत बड़ा ज्ञान है ये संसार के लिए, हमारे लिए। ये सिंपल बातें हैं, बच्चों की बातें हैं। कोई कहे तुम आत्मा हो, हम कहेंगे ये कौन सी बात बता दी तुमने, ये तो हम सब जानते हैं। मुझे याद है एक बार, अभी 2 साल पहले, उत्तर काशी है उत्तराखंड में, वहां मैं गया। एक बहन और थी साथ में, पब्लिक प्रोग्राम था। तो मैंने तो बोला जैसे बोलना होता, अच्छा ऐसा ही हॉल था, वो भर गया था। वहां ऐसे प्रोग्राम कभी होते नहीं, ना लोग ऐसे आते, लेकिन उस दिन वो पूरा हॉल भरा था। तो उस बहन को मैंने कहा, तुम योग कराना और योग के बारे में स्पष्ट भी करना, आत्मा परमात्मा का थोड़ा थोड़ा ज्ञान देकर योग की विधि और योग कराना। तो आधा घंटा कहा था, उसने 40 मिनट कराया। तो उसी सभा में वहां का एक प्रसिद्ध कथाकार भी बैठा था, जो उस एरिया का प्रसिद्ध कथाकार है, जैसे मुरारी बापू है ना इधर गुजरात में, और कई कथाएं करते हैं, कोई भागवत की, कोई रामायण की, वो भागवत की कथा करता था। तो वो उठा, हम बाहर निकल रहे थे, मुझे रोका, कहा ये बहन कौन है, इसने चारों वेदों का सार थोड़ी सी देर में सुना दिया। फिर वो बहन भी वहीं थी, मैंने मिलाया, देखो ये क्या कह रहा है पंडित जी, परिचय हो गया। फिर तो कहा, आपने तो बहन जी चारों वेदों का सार इतने थोड़े से समय में हमें सुना दिया, ये कहां से लिया आपने? मैं भी सोचता रहा कि जो ज्ञान हमारे लिए बिल्कुल बेसिक है, हमारे लिए वो कोई बात नहीं थी। चलो भाई और कुछ नहीं सुना ना, बहनों से भाषण करना नहीं आता ज्यादा, आत्मा का तो भाषण आता है, परमात्मा का योग की विधि बता दो, योग करा देना। जो हमारी बेसिक चीजें हैं प्राइमरी क्लास की, वो उसने कहा वेदों शास्त्रों का सार सुना दिया। तो बाबा ने आकर हमारी सत्य की खोज पूरी कर दी। हमें इस ज्ञान की भी बहुत वैल्यू होनी चाहिए। ये ज्ञान रतन सचमुच जीवन को पलटाने वाले हो गए ना। एक एक महावाक्य ने जीवन बदल दिया। कोई बहुत चिंताओं में भी रहता है और उसको हम कह दें, अरे बाबा ने कहा है बेफिक्र बादशाह बन के रहो, मैं बैठा हूं ना, इतना सुनते ही आत्माओं में जागृति आ जाती है। मैं देखता हूं परेशान हुए लोग थोड़ी सी बात सुन के एकदम जागृत हो जाते हैं कि बिल्कुल ठीक है, बाबा है ना हमारे साथ। तो बाबा ने हम सभी को बेफिक्र बादशाह बना दिया और हमें इस पर बहुत अच्छा काम करना है, क्योंकि संसार का हाल बिगड़ता जा रहा है। समझते हैं आप, बिगड़ता जा रहा है। अभी मैं दो जगह होकर आया, एक पंचकुला है चंडीगढ़, वो चंडीगढ़ जुड़ा ही जुड़ा है, जगह नहीं बीच में सड़क हुई यहां तक पंचकुला, यहां से चंडीगढ़ शुरू हो गया। वहां की विशेषता मैंने देखी, 300 साढ़े 300 400 भाई बहने भर्ती कर रहे थे। संडे आया तो 400 हो गए, हॉल उनका इतना ही था, इसे थोड़ा छोटा, ठसा ठस भरा बैठे। विशेषता क्या, सवेरे भी योग था कमेंट्री से, योग 4 बजे से है, देखा 4:15 से हॉल फुल है, भट्टी 9:30 से है, 9:15 से हॉल फुल हो गया है। ऐसा तो मैं कहीं उमंग नहीं देखा था आज तक। हम भी याद करते रहे और लोगों के चेहरे चमकते रहे। फिर सिरसा में था 3 दिन, सिरसा में बड़ा हॉल था और 700 भाई बहने थे। 2 दिन के बाद तीसरे दिन जो ब्रह्मा भोजन था, वहां ऐसी लहर चली कि गांव में जो माताएं गीता पाठशाला चलाती थी, उन्होंने अपने गांव में प्रचार कर दिया, क्या हो रहा है चल के देखो। नॉन वी के माताएं बहुत सारी आ गई ब्रह्मा भोजन खाने। वैसे ब्रह्मा भोजन से तो बड़ा आकर्षण होता है ना, तो उस दिन हॉल तो ऐसा ठसा ठस भरा, अभी की तो बात है 3 दिन पहले। तो समस्याएं लेकर लोग आए। मैं आपको ये बात इसलिए सुनाई, मानसिक समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं। 2 केस तो डॉक्टर साहब ऐसे आए, माताएं उनके बच्चों के हार्ट में छेद हैं, इसका इलाज होता नहीं है, लेकिन बाबा के पास इसका इलाज है। मैंने सुनाया क्लासेज में तो लोगों ने सुन लिया। पूना की एक लड़की के हार्ट में 2 छेद थे 20 साल की, और 2 मास उस प्रयोग करने से उसकी मां ने किए और दोनों छेद भर गए। सारे डॉक्टर परेशान हैरान थे कि भाई कौन डॉक्टर है ऐसा। तो माताएं कहती थी एक ऊपर रहता है डॉक्टर सुप्रीम सर्जन, जैसे आपको नशा है ना, उस माता को बहुत नशा चढ़ा। और ये केस देखकर उसके परिवार के बहुत सारे लोग ज्ञान में आए, जो बिल्कुल सुनते नहीं थे ज्ञान में आ गए। तो इन माताओं में भी माताएं और भाई बहुत सारे लोगों को मानसिक परेशानियां। पहले तो मैं सोचता था कहता था, अब दिखाई देता है कितने लोग आए, हमें रात को नींद नहीं आती है, डिप्रेशन हो गया। गांव की माताएं डिप्रेशन शब्द को जानती हैं आजकल मेजर साहब। कहती हमें डिप्रेशन हो गया है, उनके चेहरे से दिखता था डिप्रेशन हो गए। तो ये मानसिक समस्याएं संसार में बढ़ती जा रही हैं। क्या करना हमें, हमें सकास देनी है। न डॉक्टर्स कुछ कर पाएंगे, ऐसी स्थिति बनती जा रही है, और न मनुष्य की समझ में आएगा क्या आखिर करें तो क्या करें, कोई समाधान नजर नहीं आता। ऐसे में केवल बाबा के वाइब्रेशन से संसार के लिए सुख चैन का आधार बनेंगे। इसलिए हम सभी को रोज कौन सा टाइम मिलता है बहुत अच्छा हमें? एक और मिलता है? नहीं, एक और है, वो आपको भूला रहता है। मैं उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ट्रैफिक कंट्रोल के बहुत सारे गीत बजते हैं। हम अगर एक लक्ष्य ले लें कि हमें हर गीत पर संसार को सकास देनी है, तो हमारा भी वो टाइम पूरा सफल होगा। एक मिनट सफल करना भी बहुत सुंदर बात होती है योग में। और तीन चार मिनट का जो गीत बजता है वो भी संपूर्ण रूप से एकाग्रता के साथ सफल हो जाएगा। तो देखिए, 10-12 समय हमें मिलेंगे सारे दिन में, हैं 5-6 तो 3 मिनट वाले मिलते हैं, और इसके अलावा एक एक मिनट का जो गीत बजता है, तो कुछ संकल्प रख लें। एक मिनट के गीत में छोटा सा भी हम अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, मेरे मस्तक से नैनों से अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, संसार में जा रही हैं। हर ट्रैफिक कंट्रोल पर यह अभ्यास करके, एक मिनट वाले पर यह अभ्यास करके हम संकल्प कर दिया करें, सबके दुख समाप्त हों। हम पूर्वज हैं ना, हम इष्ट देव देवियां हैं, तो हमारे ये संकल्प भी बहुत बड़ा काम करते हैं। सभी का जीवन निर्विघ्न हो, सभी के जीवन में सुख चैन हो, गुड फीलिंग से यदि हम ये संकल्प करेंगे तो इनका भी बहुत बड़ा असर होगा। इसको बाबा शुभ भावना कहते हैं और सबने सुनाई है। मनसा सेवा का सबसे सुंदर आधार है शुभ भावनाएं। और जब 3 मिनट का गीत बजता है, 5 तो हमें मिलते ही हैं, सवेरे 7 बजे को जोड़कर 6, तो हम एक लक्ष्य रख लें, किसी गीत में हमें प्रकृति को सकास देनी है। बहुत जरूरी है प्रकृति को सकास देना। और किसी गीत में हमें एक सिंपल लक्ष्य रख लें, ग्लोब के ऊपर खड़े होकर सर्वशक्तिवान से कनेक्शन जोड़कर शक्तियों की किरणें फैलानी है। सिंपल संकल्प कर लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ, और मेरे सिर के ऊपर है सर्वशक्तिवान छत्र छाया। ऐसी स्थिति अपनी सेट करके फिर किरणें फैल रही हैं चारों ओर, तो हमारा 3 मिनट भी बहुत अच्छी तरह सफल हो जाएगा, और इसमें हमें बहुत सुख मिलेगा। फिर सवेरे और शाम इसका भी हम बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। एक और बहुत अच्छा तरीका सकास देने का अपना लें, सवेरे और शाम। ये करने से हमारा योग भी बहुत अच्छा होगा, एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा अभ्यास करें, मैं फरिश्ता आकाश में हूँ, चाहे पवित्रता का फरिश्ता, शांति का फरिश्ता, शक्तियों का फरिश्ता, दुख हरने वाला फरिश्ता, कोई भी एक संकल्प ले लें और अभ्यास करेंगे, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, पहले ये अभ्यास, फिर मुझसे चारों ओर फैल रही हैं, नीचे फैल रही हैं, संसार में प्रकृति में फैल रही हैं। प्रकृति है ना हमारे चार, नीचे भी ऊपर भी चारों ओर प्रकृति है। प्रकृति के 5 तत्व इनको ग्रहण कर रहे हैं, और वो अभ्यास दोनों, तो शाम को भी और सवेरे भी हम सकास देने की विशेष सेवा किया करें। इससे पुण्य भी बहुत ज्यादा बनेगा, और विशेष बात, हमारे जो नजदीकी लोग हैं, गृहस्थ वाले, आपके जो परिवार हैं, उनको पहले सकास जाएगी। 2 बहुत बड़े फायदे होंगे, आपके परिवारों में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी सबकी, और पुण्य बहुत जबरदस्त बनेगा, क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस न जाने किसको क्या मदद कर दें, ये हमें पता नहीं चलेगा, पर ये पक्का है कि न जाने किसको क्या मदद हो जाए। ये हमें पता चले या न चले, पर मदद होगी अवश्य। लक्ष्य, इस पर हम बहुत अच्छा ध्यान देंगे और एक लक्ष्य बना ले कि इसको हमें रोज करना है, भूलना नहीं है। ये हमारी एक नेचुरल साधना हो जाएगी, कर्मयोग की साधना हो जाएगी। बेफिक्र बादशाह, समय ऐसा आता जा रहा है जब संसार में चिंताएं और फिकर बढ़ती ही जाएंगी दिनों दिन। मैं तो बहुत माताओं को देखा, अभी भी शिरसा की मैं बात कर रहा था, उन्हें देखकर मुझे लगता था सचमुच बाबा इन माताओं को प्यार क्यों करता है। बड़े कष्ट में है ये माताएं, आपने वो माताएं जिनके पास अभी ज्ञान नहीं है, ब्रेन पर दबाव है, सिर पर एक दबाव है, खुशी से तो जैसे सदा के लिए नाता टूट गया है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सोते भी चिंताओं में हैं, उठते भी चिंताओं में हैं। और हम जब उठते हैं न केवल खुशी से उठते हैं, लेकिन उठते ही किससे मिलते हैं, उठते ही प्रभु मिलन, और सोएंगे भी उसके साथ, उसे गुड नाइट करके। कितनी अच्छी बात है ये। लेकिन मैं माताओं को देखता था कि सचमुच ये दया की पात्र हैं, तो भगवान ने ऐसे ही दया नहीं की, आप सबके तो चेहरे चमक गए हैं ज्ञान सरोवर में आके, लेकिन मैं देखता था कि कैसे किसी को किसी ने सताया है। एक माता मुझे फोन करती रहती है, आज भी उसका फोन आया है, मेरा पति मुझे बहुत तंग करता है, 18 साल तो हो गए इसके साथ रहते, और आखिर कितने साल रहना पड़ेगा, कभी मुझे क्या पता कितने साल रहना पड़ेगा मैं क्या करूं, ये मेरी बात सुने, ये नहीं सुनता, बिल्कुल तंग करता है मुझे, पैसा भी नहीं देता घर खर्च के लिए। बड़ी समस्या यहाँ हो जाती है, बच्ची है उसको पढ़ाना है, घर चलाना है, पैसा नहीं देता है, तो माताओं पर दबाव बन जाता है ना, नेचुरल है ना। पति पैसा भी न दे, ठीक से बात भी न करे, इंसल्ट भी करे, अहंकार भी दिखाए, क्रोध भी करे, तो कोई भी हो उस पे मानसिक दबाव रहता है, उसका बीमार होना है। तो माताएं कहती हैं बस एक ही रास्ता सूझता है, मर जाएं। मैंने कहा नहीं, मरो नहीं, अब बाबा आ गया, ज्ञान अभी अभी लिया होता है, ऐसी माताओं ने अभी शुरू किया है। मैंने कहा नहीं, अब तुम ज्ञान लो और बाबा के साथ सुंदर अनुभव करते हुए जीवन की यात्रा पूरी करो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कर्मों के बंधनों के कारण, हिसाब किताब के कारण हैं और रहेंगी, उन्हें कुछ किया नहीं जा सकेगा। कभी इसने उनको सताया है, अब वो सता रहे हैं, बात तो यही है। मैं हंसी में कह भी देता हूँ, आज उस माता को मैंने कहा कि तुमने भी ऐसे ही किया था पिछले साल, इसको ये भी कहता था मर जाऊं इसके साथ कब तक रहूंगा, अब पूरा हो रहा, आराम से पूरा कर लो, तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। बाबा जब हमारा हाथ पकड़ लेता है तो बाबा ने वायदा कर लिया है तुम्हारी आवश्यकताएं पूरी होती ही रहेंगी। सबको इस बात का पूरा विश्वास होना चाहिए, इसलिए ये परेशानी की जरूरत नहीं, क्या होगा, कहाँ से खाएंगे, बच्चों को कहाँ से मिलेगा, नहीं, वो बाबा आपे ही रास्ता निकालता जाएगा ही। तो हमें बेफिक्र बादशाह भी बनना है, वाइब्रेशंस बहुत अच्छे चारों ओर देने हैं, संतुष्ट मणि बनकर रहना है, संतुष्ट मणि। देखिए हमारी खुशी को छीनने वाली बहुत बातें आती हैं, और हमारी संतुष्टता को असंतुष्टता में बदलने वाले भी बातें होती रहती हैं, लेकिन हमें एक लक्ष्य रख लेना है कि बातें तो आएंगी और चली जाएंगी। जिस युग में हम रह रहे हैं वो सतोप्रधानता का युग नहीं है, वो कलयुग के भी अंत का काल आ गया है, जहां हर चीज अपनी चरम सीमा में है। ऐसे में बहुत सारी बातों को हमें स्वीकार करना ही पड़ता है और अपनी स्थिति को उससे ऊंचा उठाना पड़ेगा। एक भाई अभी मेरे पास आया बाहर का, तो मुझे एक मैगजीन दे गया, उसमें एक लेख छपा है काल गणना, युगों की गणना, काल कितने समय का है। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं। एक बात उसने बहुत अच्छी लिखी के संसार का पतन का नियम, पतन निरंतर गिरावट, ये स्वीकार करना ही पड़ता है। सतयुग से और कलयुग तक धीरे धीरे पतन होता है, लेकिन कलयुग से सतयुग धीरे नहीं बनता, वो फट से बन जाता है। उसने शास्त्रों के उदाहरण दिए हैं। मैंने कहा देखो शास्त्रों में भी जो बाबा कहते हैं, आटे में नमक की तरह कुछ कुछ बातें लिखी अवश्य हैं, तो उसकी कई सारी बातें पढ़कर मुझे लग रहा था कि ये बातें सभी ब्राह्मणों को अच्छी तरह मालूम रहनी चाहिए। तो दूसरों को जो ज्ञान देते हैं ना हम सभी, उसमें थोड़ी मदद मिल जाती है। बाहर वाले लोग जो कुछ विश्वास नहीं करते तो उन्हीं बातों से बहुत अच्छा विश्वास करने लगते। मैं अभी पढ़ रहा था, पूरा नहीं पढ़ पाया, पर कई बातें उसमें बहुत ही अच्छी थी। उसने युवाओं की आयु के बारे में लिखा कि कहीं कहीं तो ऋषियों ने, देखो वंडरफुल बात आप सुनेंगे, एक युग की आयु 5 वर्ष भी मानी है। 5 वर्ष, मैं भी सोचता रहा कि गलत तो नहीं छप गया, 5,000 की जगह 5 लिख दिया हो, पर नहीं, उसने 5 ही लिखा था। इसमें क्या है, उसने भी लिखा और ये सत्य भी है, हर युग में वर्ष क्या है उसकी व्याख्या अलग, महीना क्या होता है उसकी व्याख्या अलग। ये जो शब्द हैं इनके अर्थ हर भाषा में बदलते रहते हैं ना। जैसे आप जानते हैं गुजराती में नमक को कहेंगे मीठू, और हिंदू हिंदी वाला समझ ले कि मीठू लाओ तो चीनी ले आएंगे ना। तो एक ही भाषा का, एक ही चीज के दो दो कई कई शब्द होते हैं। गुजराती में बड़ी बहन को कहेंगे मोटी बहन, और मोटी सुन ले इधर हिंदी वाले तो कहेंगे बहुत मोटी होगी, अलग अलग अर्थ। मैं मराठी के, तेलुगु के, आंध्र में मैं बहुत जाता हूँ, तो तेलुगु के बहुत सारे शब्दों को सुनकर सोचता हूँ कि देखो अगर कोई तेलुगु वाले ने शास्त्र लिखा हो, भले ही वो हिंदी में लिखे या संस्कृत में लिखे, तो उस भाषा के कुछ शब्द तो उसमें आएंगे ही, और उनका अर्थ कुछ और होता है। तो कहीं वर्ष का अर्थ कुछ और है, किसी भाषा में उसका अर्थ कुछ और है। जैसे किसी किसी ने कहा कि फलाने तीर्थंकर ने 4 अरब साल तक तपस्या की, 4 अरब। तो मैं पूछा करता हूँ, मैंने कहा आपको पता है अरब कितना बड़ा होता है? तो निश्चित रूप से अरब शब्द का अर्थ कुछ और रहा होगा। हम उसको आज के शब्दों की जो व्याख्या है उस अनुसार उसकी चर्चा करते हैं और कहते हैं नहीं की होगी, ऋषियों में, तीर्थंकरों में, हमारे मुनियों में इतनी शक्ति थी, वो इतना लंबा समय जी सकते थे, पर 4 अरब, ये तो सोचने से परे की बात होती है ना। तो हम सभी बहुत अच्छी तरह समय के महत्व को पहचानेंगे। देखिए मनुष्य को श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए अपने जीवन को महत्व देना, समय को महत्व देना और अपने संकल्पों को महत्व देना ही चाहिए। बाबा ये बात बार बार हमें कह रहे हैं, इन तीनों को महत्व दें। मुझे एक बात और याद आ गई, बाबा अभी आते हैं ना, थोड़ा समय आते हैं ना, तो कोई भाई कह रहा था कि भाई लगता है बाबा ने सारा ज्ञान तो दे दिया है पहले पहले, अब तो जैसे ऐसे ही निभाने आता है कि चलो बच्चे आए हैं, एक आधी बात सुना दूं और इन्हें दृष्टि दे आऊं, मिल लूं, बाकी वो असली पार्ट पूरा कर दिया है बाबा ने। इस बार सीजन में हम सब देखेंगे बाबा का कैसा पाठ चलता है, कितनी मुरली चलती है। दादी की तबीयत तो अच्छी है, पिछले साल वाली तो नहीं है, तो लगता है कि इस बार बाबा अधिक समय हम सबको देगा। और हम सब तो क्या चाहते हैं, बाबा साहिजात ही बैठा रहे, चाहते हैं या नहीं? तो बाबा की वाइब्रेशंस में बैठने का सुख भी भाग्यवान आत्माओं को मिलता है और वो हम सबको मिलेगा, लेकिन फिर भी इतना तो बाबा नहीं देगा, क्योंकि आज तक हम देखते आए हैं जो परंपरा एक बार बन गई वो चलती है, फिर उसे नीचे ही होता है, उसे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो बाबा 2 घंटे भी हमारे बीच में अगर रहता है तो बहुत अच्छा रहेगा। हम सब कुछ लक्ष्य बना लें, हम कुछ चीजों पर चर्चा कर लेते हैं, हम इन 18-19 दिनों में क्या करें, कुछ करेंगे ना तो हमें भी आनंद होगा और बाबा भी हमसे प्रसन्न होगा। और ये बिल्कुल सत्य है कि बाबा से मिलन की अनुभूति का आधार हमारी स्थिति ही होता है। ये नहीं कि हम जाकर बैठ गए और बाबा आ रहा है तो उसके वाइब्रेशंस तो हमें मिलेंगे ही, उसके वाइब्रेशंस तो चारों ओर फैलते ही हैं, लेकिन हमारी स्थिति के अनुसार हम उन वाइब्रेशंस को कैच करते हैं, ग्रहण करते हैं, हमें उस अनुसार ही अच्छे अनुभव होते हैं। तो अब से ही हम ध्यान देंगे, हमें अपनी एकाग्रता को बढ़ाना है। मैं एकाग्रता को बढ़ाने की एक बहुत ही सरल सी विधि आपके सामने रख रहा हूं, उसे लौकिक काम भी पूरा होगा, लौकिक माना स्थूल शरीर का भी, और हमारी एकाग्रता भी बहुत बढ़ेगी और मुझे विश्वास है कि आप सबको वो चीज पसंद आएगी। हमें अपनी शक्तियों से, आत्मा की शक्तियों से रोज एक बार इस देह को भी चार्ज करना चाहिए। ये भाषा आप समझते ही होंगे, तो एक बहुत अच्छा तरीका हम अपनाएंगे। मैं ये तरीके बाहर वालों के भी सुने हैं कि कैसे वो एक एक अंग को रिलैक्स करते हैं, सवासन रिलैक्स कराते हैं ना, हमारे गिरीश पटेल भी रिलैक्स कराते हैं, रिलैक्स करो, हाथों को रिलैक्स करो, पैरों को रिलैक्स करो। कहीं हमारे बहने भी योग से पहले बॉडी को रिलैक्स करके आत्मा तक लाते हैं। तो हमें क्या करना है, मैं आत्मा मस्तक के मध्य में हूं, दो संकल्पों से करेंगे, पवित्रता का सूर्य हूं और गोल्डन किरणें मुझसे फैल रही, जैसे सूरज की किरणें ना सफेद भी नहीं होती, लाल भी नहीं, गोल्डन जैसी, ऐसी किरणें मुझसे फैल रही हैं। अब ये किरणें हमें सारे शरीर में फैलानी है, तो पहले अभ्यास करेंगे, ये ब्रेन में जा रही हैं, मस्तिष्क में, थोड़ी देर 10 सेकंड 20 सेकंड, जैसे इन किरणों से हमारा मस्तिष्क भर रहा है। संकल्प कर लेंगे हमारा मस्तिष्क पूरी तरह एनर्जेटिक हो जाए, शक्तिशाली बन जाए, परफेक्ट हो जाए, नॉर्मल हो। फिर अभी संकल्प करेंगे वो किरणें आत्मा की पूरे चेहरे में फैल रही हैं, आगे आंखों में, मुख में, अंदर, सब जगह फैल रही हैं। फिर पीछे फैल रही हैं गर्दन की तरफ, फिर पूरी बैक पर, कमर पर फैलते फैलते फिर लेफ्ट हैंड में धीरे धीरे फैल रही जैसे गोल्डन किरणें, फिर राइट हैंड में एक एक देखते चलेंगे और 5-7 सेकंड तक देखेंगे, फिर आगे के हिस्से में, छाती में, पेट में, पूरे हार्ट में, लंग्स में, जितने भी अंग हैं सब में फैल रही है और उन्हें शुद्ध कर रही हैं। उसमें जो टॉक्सिन्स हैं, जो भी गंदगी है उसको निकाल रही हैं। फिर नीचे लेफ्ट पैर में पूरे में फैल गई, फिर राइट पैर में फैल गई, आगे फैल गई, पीछे फैल गई। एक मिनट करके देखना जरा पहले। दूसरा संकल्प है, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मुझे लाल किरणें फैलती हैं और ऐसे ही लाल किरणें ब्रेन में, फिर पीछे पूरे शरीर में, हाथों में, पैरों में, फिर आगे के हिस्से में, पूरे शरीर में, पैरों में। बहुत अच्छी एकाग्रता होती है, लेट के भी कर सकते हैं, आज रात को आप करके देखना सोने से पहले, और सवेरे इसका इफेक्ट कितना सुंदर आएगा। भले ही सोने से पहले 3 मिनट 5 मिनट लगा देना, एनर्जी जाएगी पूरी बॉडी को और इससे हमारा शरीर भी हेल्दी रहेगा और एकाग्रता में कितना बल मिलता है इसको आप खुद महसूस करना। तो हमें बाबा के आने तक एकाग्रता बहुत बढ़ानी है। अब है योग की एकाग्रता, और योग की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए सबसे सुंदर तरीका है 5 स्वरूपों का अभ्यास, उसमें छठा स्वरूप भी जोड़ देंगे, बाबा। अपना आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप आत्मा, आदि स्वरूप देवता, पूज्य स्वरूप, फिर मैं ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, बहुत अच्छे नशे में चिंतन के साथ, और फिर आत्मा और फिर बाबा, ऊपर गए परमधाम में, फिर वहां से आत्मा आई देव युग में, पहले जन्म में, आदि स्वरूप में, छह बातों में ये सर्किल पूरा होगा। इससे हमारी एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी और सबको ये अनुभव होगा कहीं ना कहीं अवश्य। हम पूर्णतया संतुष्ट तभी होते हैं जब योग में हमारी बहुत अच्छी एकाग्रता हो जाए। थोड़ी देर के भी एकाग्रता आत्मा को इतना अधिक आनंद से भरपूर करती है, मन संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट मन ही शांत होगा। अगर मन में संतुष्टि नहीं तो शांति भी नहीं, मन भटकता रहता है इधर उधर। तो इसका बहुत अभ्यास हम सबको बढ़ाना है, ध्यान देना है। इस बार अभी ये हमारे पास जो 18-19 दिन हैं, हम ट्रैफिक कंट्रोल के समय भी सकाश से जोड़ दें इस बात को, मैं फरिश्ता हूं। और उसमें भी एक सुंदर शब्द, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। यह अभ्यास बहुत अच्छा कर लें सारा दिन। देखिए, बहुत अच्छी तरह ये बात समझने की है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। हम केवल स्मृति में लाएंगे ना, मैं फरिश्ता हूं, तो वैसी स्थिति बनती जाएगी। हम लाइट होते जाएंगे, हमसे चारों ओर लाइट फैलती भी जाएगी। आपको याद होगा नहीं, अभी बहुत दिन हो गए, पिछले सीजन की मुरली में बाबा ने एक बहुत गहरी बात हमें कही है कि जैसे जैसे तुम आत्माओं की लाइट बढ़ती जा रही है, हम योग करते हैं, धारणाएं अपना रहे हैं, खुशी, तो हमारी आत्मा की लाइट बढ़ती जाए, ओरा जिसे कहते हैं, हमारी किरणें, हमारा लाइट दूर दूर तक जा रही है, तो तुम्हारी लाइट से संसार का अंधकार दूर हो जाएगा। ये एक वंडरफुल बात थी मुरली में, अव्यक्त में। वैसे तो ज्ञान से अंधकार दूर होता है हम ये कहते हैं, पर इसके पीछे और सूक्ष्म रहस्य है कि आत्मा की लाइट बढ़ते बढ़ते जग का अंधकार दूर हो जाएगा। जैसे शहरों में रात को अगर ऊपर से देखा जाए तो चारों ओर जो लाइटें जलती हैं, बड़ी बड़ी हैलोजिन जलती हैं, तो नजारा कितना सुंदर होता है। जब प्लेन से हम देखते हैं नीचे तो वंडरफुल चीजें होती हैं। वहां मैं था दुबई में और मस्कत में, तो वहां बाहर जो रोड्स होती है ना 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की, उस पर भी लाइट है सब जगह, क्योंकि वहां लाइट बहुत पैदा होती है। वो बिजली जो पानी को प्योरीफाई करते हैं ना सागर से, उसी पानी से वो टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा करते हैं। तो जो 100 किलोमीटर की अगर सड़क है तो उसपे दोनों ओर हैलोजिन बड़ी बड़ी लाइट लगी हुई है, और बहुत सारी सड़कें, क्योंकि वहां रेगिस्तान है, कोई खेती नहीं, कोई पेड़ नहीं, तो सड़कें बहुत बनाई हैं जहां तक। तो हम देखते थे कितना चमकता है वो सब, जैसे रात में भी दिन दिखाई देता था। आत्माएं जब ऐसे ही चमकेंगी संसार में तो सचमुच संसार का अंधकार दूर हो जाएगा, और ये आत्मा की चमक बाहर वालों को भी दिखाई दिया करेगी। बाबा ने बात बताई हुई है कि हम आत्माओं की चमक इतनी बढ़ जाएगी, और कुछ फिर बाबा अपनी दिव्य दृष्टि की चाबी यूज करेगा तो आत्माओं की लाइट मस्तक में दिखाई देगी और उसका प्रभाव बहुत जबरदस्त होगा। तो मैं फरिश्ता हूं, विशेष रूप से मस्तक के मध्य में जैसे ज्योति जग रही है, चल रही है, लाइट जल रही है, ऐसी फीलिंग हम करने लगे। ये बाबा का महावाक है कि मस्तक में तुम्हें ज्योति जगती हुई फील होनी चाहिए। दिखेगी तो वो दिव्य नेत्र से ही। इसका हम बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। आज की मुरली से एक अभ्यास ले ले, याद करो, दिव्य बुद्धि क्या है? ये वाहन है, हमारा विमान है ये, जिसके द्वारा हम तीनों लोकों में आराम से जा सकते हैं। दिव्य बुद्धि जिसके पास नहीं है उसको तीनों लोकों का अनुभव करना कठिन होता है। तो ये तीनों लोक ही हम ऐसा मान लें हमारे घर हैं। संसार में तो हम रहते ही हैं, सूक्ष्म लोक भी हमारा घर है जहाँ चैन और विश्राम है। परम धाम हमारा घर है, संपूर्ण शांति है, चैन है, आत्मा विश्राम में आ जाती है। तीनों में हम जितना चाहें जाके रह सके, ये प्रैक्टिस हमें इन 18 दिनों में अच्छी करनी है। तीनों लोकों में यहाँ है तो मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर हूँ, रिलैक्स, देह अलग है मैं अलग हूँ। थोड़ी देर के लिए हम ऐसा अभ्यास किया करें जैसे देह है ही नहीं, केवल मैं हूँ। ब्रह्मा बाबा का लास्ट 2 सालों में ये बहुत सुंदर अभ्यास और अनुभव था, देह जैसे है ही नहीं, केवल मैं हूँ निराकार आत्मा। इस अभ्यास को हम बहुत अच्छा बढ़ाएंगे और अपने योग के चार्ट को 4 घंटे से अधिक कर्म में ही, कर्म में ही हम ऐसी कॉन्शियसनेस में रहें, ऐसी स्मृतियों में रहें जो हमारा योग ही है। वो भी अगर हम इस स्मृति में रहते हैं, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं पूर्वज हूँ, ये भी हमारा योग हो गया, क्योंकि ये स्वदर्शन चक्र के हिस्से हैं सब। अपने देव स्वरूप की स्मृति में, नशे में यदि हम रहते हैं तो ये भी हमारा बहुत अच्छा योग हो जाता है। तो हम जरा 18 दिनों को अपनी साधनाओं के दिन बना लें कल से, मन को ऐसा भरे, रोज प्रभु मिलन का अनुभव करें। बाबा आएंगे लेकिन उससे पहले रोज सवेरे एक बार बहुत अच्छी तरह बाबा के मिलन का अनुभव करना है। और उसका तरीका है कि हम अपने को सूक्ष्म लोक में अनुभव करेंगे और बाप दादा सामने हैं, थोड़ा दूर देखेंगे, बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं, बहुत मजा आएगा, और हमें दृष्टि दे रहे हैं बाबा, ये मिलन। फिर बाबा समीप आ गए हैं और बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया है, बहुत अच्छा अनुभव रोज करना है। और इसके बाद जो बाबा ने कहा था कि बाबा से रोज वरदान लो, तो अभ्यास करेंगे, बाबा ने तिलक लगा दिया मस्तक पर और 3 वरदान दिए, विजयी भव, निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव, और फील करेंगे कि सचमुच हमें वरदान मिल गए रोज। तो इसमें हम 5-7 मिनट लगा सकते हैं रोज सवेरे, बाबा ने जो हमारे सिर पे हाथ रखा तो हाथ से बहुत सुखद वाइब्रेशंस फैलने लगे, शरीर में भी, आत्मा में भी, मन बुद्धि में, देह में, और एकदम सुखद फीलिंग, भगवान का वरदान ही हाथ सिर पर रखा है, बहुत क्लियर देखेंगे इसे, देख सकते हैं ना क्लियर। ऐसे अभ्यास हम बाबा के आने तक करेंगे तो मन बहुत संतुष्ट रहेगा, और ये खुशी एक अलग खुशी है, अलौकिक खुशी है, जिस बाह्य खुशी से बहुत अलग है, सूक्ष्म है। मन ऐसे एक आनंद की स्थिति में रहता है जिसे अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, उसमें ही आत्मा पूरी तरह से तृप्त रहती है। तो हम सभी, मेरे सहित, मैं भी रोज सोचता हूँ कि बाबा आएंगे तो ऐसे ही मिलने नहीं जाएंगे, भागे भागे कुछ करके जाएंगे, एक गर्व के साथ जाएंगे कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं तो ये बहुत कुछ करके आ रहे हैं, तुमने जो काम दिए थे वो करके आ रहे हैं। जैसे स्टूडेंट एग्जाम में जाएं और बहुत अच्छी तैयारी हो तो आनंद होता है उनके लिए परीक्षा, और तैयारी ना हो तो टेंशन होती है, पता नहीं बाबा क्या कहेगा। लेकिन बाबा तो बहुत अच्छा अच्छा कहता है और हमारी स्थिति अनुसार हमें फील होता है। कभी बाबा ने सिंपल मुरली चलाई तो हजारों लोग कह रहे हैं बहुत प्यार दिया बाबा ने, हैं? ये अपनी फीलिंग है। बाबा ने जरा सी एक शिक्षा की बात कह दी तो बहुत सारे भाई बहने कह रहे हैं आज तो बाबा धर्मराज था। कईयों को लगा कितनी अच्छी बातें बाबा ने कही, हमारा श्रृंगार किया, तो कईयों को लग रहा आज तो धर्मराज था। ये अपनी अपनी फीलिंग होती है। तो चलेंगे हम सभी बहुत सुंदर तैयारी के साथ प्रभु मिलन की ओर। ओम शांति। अब सुख संवतन में पहुंचेंगे, जरा वही अभ्यास, बाबा का हाथ सिर पर और दृष्टि दे रहे हैं।